خاندانوں پر لعنت کی اور اس کے بعد افراد پر لعنت کی اور تیسرے مرحلے پر ان لوگوں پر لعنت کی جو سیاہی لشکر بنے، کیونکہ دشمن کا سیاہی لشکر بن جانا دشمن ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ روایات ہیں اور اس پر تاکید کی گئی ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو شخص کسی بھی قوم سے شباہت اختیار کرتا ہے وہ انہی میں سے ہے، چاہے وہ قوم اچھی ہو یا بری۔ اگر اچھوں سے شباہت حاصل کرے گا تو ان میں سے ہے، اگر بروں سے شباہت حاصل کرے گا تو ان میں سے ہے۔ اب یہاں پر یہ جملہ بھی جملہ معترضہ کے عنوان سے کہہ دوں، ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ علی بن جائیے، ना आप अली बन सकते हैं ना इसका इम्कान ज़ाती है। हम तो ये कहते हैं कि कम से कम इस मंजिल पर आ जाइए कि अगर कोई दूर से देखे तो ये कहे कि ये उसी तरफ जा रहा है। कोई दूर से कहे देखे तो ये कहे कि इसकी जिहत उसी तरफ है जिस तरफ अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की है। और ख़ुद अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने फरमा दिया कि तुम मुझ जैसे बन ही नहीं सकते, नामुमकिन है। और अमीरुल मोमिनीन जैसा ना बनने से मुराद ये नहीं है, मसलन आप देखें दो रकत अमीरुल मोमिनीन भी पढ़ रहे थे, दो रकत हम भी पढ़ते हैं। और जो फरमाइएगा अमीरुल मोमिनीन फजर की चार रकत नमाज थोड़ी पढ़ते थे, अमीरुल मोमिनीन फजर की दो रकत नमाज पढ़ते थे, दो रकत हम पढ़ते हैं, फ़र्क क्या है, कहाँ उनकी दो रकत, कहाँ हमारी दो रकत, कौन सी चीज़ है जो फ़र्क ईजाद कर रही है? वो बस एक चीज़ है, उनका ताल्लुक वहाँ से है, हमारा ताल्लुक यहाँ से है। सलावात पर मोहम्मद की तीनत नूर से है, हमारी तीनत मादे से है। उनका जिस्म भी नूर, उनकी रूह भी नूर, उनका किरदार भी नूर, उनका कलाम भी नूर, वहाँ नूर ही नूर। तुम मानो या ना मानो, तो फरमाएं तुम मानो या ना मानो, अगर पूरी दुनिया मिलकर कहे कि ये सूरज नहीं है तो सूरज की शान में कोई गुस्ताखी होने वाली नहीं है, लेकिन इतना जरूर साबित हो जाएगा कि आप अंधे हैं। सूरज की रोशनी में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, सूरज की नूरानियत में कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा, वो सूरज है चमकता रहेगा, दोस्त भी फायदा उठाते रहेंगे, दुश्मन भी फायदा उठाते रहेंगे, कहते रहेंगे अगर अली ना होते तो मैं हलाक हो जाता, मगर अली अली रहेंगे। बहरहाल मैं कह चुका हूं कि गुफ्तगू को किसी मकाम पर खत्म करना चाहता हूं, तीन दिन रह गए हैं। और उसके बाद फिर आवाज दी, वलअन अल्लाह उम्मतन असरजत व अलजमत व तनक्कबत व तहय्यत, चार चीजें, वलअन अल्लाह उम्मतन असरजत व अलजमत व तनक्कबत व तहय्यत लिक़तालिक, लानत हो उन लोगों पर कि जिन्होंने जीन लगाई, घोड़ों पर तो जीन लगाते हैं, अब क्या करें कि हम इतने गिर चुके हैं कि हम अपनी उर्दू अदब ही से वाकिफ नहीं हैं, जो छोटे छोटे अल्फाज हैं। अब जवान पूछते हैं कि ये जीन होती क्या है। बहरहाल वलान अल्लाह उम्मतन असरजत व अलजमत व तनक्कबत लिक़ताल व तहय्यत लिक़तालिक, लानत हो उन लोगों पर कि जिन्होंने जीन लगाई, लानत हो उन लोगों पर कि जिन्होंने लगाम थामी, लानत हो उन लोगों पर कि जिन्होंने नकाब डाली। कल ये आप हज़रात के सामने बयान कर दिया था कि लानत के नकाब डालने वाले कौन लोग थे, नकाब डालने वाले वो लोग थे कि जिन्होंने नहीं चाहा था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को कत्ल करें, मगर अपने गुमान में अपने जाम में मजबूरन करबला आ गए, और फिर उन्होंने वो फेले शनी और फेले कभी अंजाम दिया कि तारीख ने लिखा। रिवायत के मुताबिक ये उन्हीं में से हैं कि जो कत्ल करने वाले थे। और अगले मरहले पर व तहय्यत, इस मरहले पर ये जुमले को ख़त्म कर दूंगा, व तहय्यत उन लोगों पर लानत है कि जिन्होंने ज़मीना फराहम किया। तवज्जो फरमाइएगा, ये अजीब मरहला है, मैंने इशारा किया था, थोड़ा तफसील से बयान करना चाह रहा हूँ। लानत हो उन लोगों पर कि जिन्होंने आपको कत्ल नहीं किया, जिन्होंने आपको कत्ल करने के लिए ज़मीना फराहम किया। और ये मैंने आपके सामने बयान किया था कि हमारे यहाँ जो मशहूर है कि अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम, मशहूर है कि अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के ज़माने में तीन गिरोह थे, तीन गिरोह नहीं थे, चार गिरोह थे, नाकिसीन, कासितीन, मारिकीन, साकितीन। وہ افراد جو اصحاب جمل تھے، وہ افراد جو اصحاب صفین تھے، وہ افراد جو اصحاب نہروان تھے، اور وہ افراد جو خاموش تھے، وہ جو فرمائیں اگر یہ خاموش نہ ہوتے، یا ہمارے الفاظ میں اگر یہ سیدھے سادھے نہ ہوتے تو وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے۔ کیونکہ اگر آپ فہرست دیکھیں تو کچھ افراد تھے، سب نہیں، کچھ افراد تھے جو امیر المومنین کے مقابل پڑھتے، گنے چنے تین سے چار افراد بنیں گے۔ یہ تین سے چار افراد ان سیدھے سادھے لوگوں کے کاندھوں پر سوار ہو کر آگے بڑھے تھے۔ اگر یہ اپنے کاندھے نہ دیتے، توجہ فرمائیے گا، اگر یہ اپنے کاندھے نہ دیتے، اگر یہ اپنی پشتیں نہ دیتے تو ان کی مجال نہیں تھی کہ علی کے مقابل پر آ جاتے، اور ان میں سے کوئی بھی امیر المومنین کے مقابل پر نہیں آ سکتا تھا۔ مگر کیا کریں، خدا نے چاہا یہ تھا کہ علی عام افراد کی طرح آگے بڑھیں، اپنی طاقت کے بلبوتے پہ آگے نہ بڑھیں، ورنہ اگر یہ اپنی طاقت دکھا دیتے، فرمائیے گا، اگر طاقت دکھا دیتے، اور انہوں نے کچھ جگہوں پر اپنی طاقت دکھا کے بتایا کہ یہ نہ سمجھنا ہم مجبور تھے، اگر کرنے پر آ جائیں تو دنیا کو زیر و زبر کر دیتے ہیں، مگر کیا کریں، ہم پروردگار عالم کے بندے ہیں، ہم پروردگار عالم کے نمائندے ہیں، ہم پروردگار عالم کے جانشین ہیں۔ میں نے بیان کر دیا، ہم پروردگار عالم کے جانشین ہیں۔ جانشین یعنی وہ جو اس کی جگہ پر بیٹھتا ہو، جانشین جگہ پر بیٹھنے والا وہ ہو جو خدا کی جگہ پر بیٹھنے والا ہے۔ اب یہ کون سی بحثیں ہیں کہ خدا کی جگہ پر کون بیٹھ سکتا ہے، آیا خدا کی جگہ پر کوئی بیٹھ سکتا ہے؟ جی ہاں، پروردگار عالم نے تو کہا ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو میرے جانشین ہیں، مجھے فرمائیے گا، خدا نے تو کہا ہے انسان کا جانشین انسان ہو سکتا ہے، مگر خدا کا کون جانشین ہو سکتا ہے؟ آیا خدا کا بھی کوئی جانشین ہو سکتا ہے؟ ہاں، اگر دو خدا ہوتے تو یہ بات صحیح ہوتی کہ خدا کا جانشین خدا ہوتا، لیکن کیا کریں، خدا خود کہہ رہا ہے کہ یہ 14 میرے جانشین ہیں۔ مجھے فرمائیں، اب یہ جانشین ہونے سے مراد کیا ہے؟ میں ان بحثوں میں نہیں جانا چاہتا، ایک لفظ کا معنی کرنا چاہتا ہوں۔ جانشین ہونے سے مراد یہ ہے، یہ وہ افراد ہیں جنہیں دیکھو تو میں یاد آ جاؤں گا۔ جنہیں دیکھو تو میں یاد آ جاؤں گا، جنہیں دیکھو تو دھوکا کھا جاؤ گے، وہ خدا ہے یا یہ خدا ہیں؟ وہ تو انہوں نے سجدے کر کے بتا دیا کہ یہ بندے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ عالم ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، سجدے کرنے کے بعد یہ عالم ہے۔ اگر ہمارے سامنے سجدے نہ کرتے، ہمارے سامنے عبادت نہ کرتے تو کیا عالم ہونے والا تھا؟ بہرحال یہ پروردگار عالم کے نمائندے ہیں۔ پروردگار عالم کی سنت یہ ہے کہ پروردگار بدلہ لینے میں کبھی جلدی نہیں کرتا، فرمائیے گا، پروردگار عالم بدلہ لینے میں کبھی جلدی نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بدلہ یا انتقام لینے میں وہ جلدی کرتا ہے جسے مجرم کے بھاگ جانے کا خوف ہوتا ہے۔ تم بھاگ کر کہاں جاؤ گے، پلٹ کر ہماری ہی طرف آنا ہے، اور جب تک یہ نہیں ہوں گے تو تمہاری روح بھی قبض نہیں ہو سکتی۔ یہ فیصلہ کریں گے کہ تم نے زندگی کیسی گزاری، تم اہل جنت ہو یا اہل نار ہو، وہاں آنے کے بعد نہیں، اسی دنیا میں فیصلہ لے کر آنا۔ توجہ فرمائیے گا، ولعن اللہ امتن اسرجت والجمت وتنقبت وتحیات، لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے زمینہ فراہم کیا۔ میں مثال کے طور پر ایک شاہد بیان کروں اور اپنی بات کو آگے بڑھا دوں، لعنت ہو ان لوگوں پر کہ جنہوں نے زمینہ فراہم کیا۔ کیسے؟ ایک شخص ہے جو شام آیا، اس نے دیکھا کہ یہ میری اونٹنی ہے۔ اس سے پہلے میں دو الفاظ کے معنی بیان کر دوں، عربی میں دو الفاظ ہیں، جمل اور ناقہ۔ جمل مذکر کے لیے ہیں، ناقہ مؤنث کے لیے۔ اس نے دیکھا کہ یہ میری اونٹنی ہے، اس نے کہا کہ بھائی یہ میری اونٹنی ہے، واپس کر دو، کیونکہ یہ اونٹنی جنگ صفین کے بعد یہ لوگ لے آئے تھے۔ اس نے کہا یہ میری اونٹنی ہے، واپس کرو۔ انہوں نے کہا نہیں، یہ جمل تو میرا ہے، یہ کہہ رہے یہ ناکہ میرا ہے، وہ کہہ رہے یہ جمل ہمارا ہے۔ جمل اور ناکے پر بحث چل رہی ہے، جہاں تک کہ بات پہنچی حاکم شام تک۔ حاکم شام نے کہا کہ بھائی گواہی ہے تمہارے پاس؟ اس نے کہا گواہی تو نہیں ہے کوئی، میں تو غریب الوطن ہوں، मैं यहाँ आया था काम से, मैंने देखा ये मेरा नाता है, उनसे पूछा गवाही है, उन्होंने कहा गवाही है, ले लीजिए गवाही। गवाही दे दी गई, हाकिम शाम ने फैसला कर दिया कि ये जमल उनका है। फैसला कर दिया कि जमल उनका है। ये परेशान था कि भाई ये नाका तो मेरा था, ये नाका मेरा था और ये कह रहे जमल उनका है। परेशानी के आलम में खड़ा हुआ है, नाका मिले या ना मिले, परेशानी ये है कि वो कह रहे हैं जमल उनका है और मैं कह रहा हूं नाका मेरा है। मगर वो भी बहुत होशियार था, जब सब चले गए तो उसने इसे बुलाया कि देखो मुझे मालूम है कि ये नाका तुम्हारा था, मुझे मालूम था कि नाका तुम्हारा है, मगर मैं चाहता हूं कि जाकर अली को ये बता दो कि मैं उन लोगों पर हुकूमत कर रहा हूं जिन्हें यही नहीं मालूम कि जमल और नाके में फर्क क्या है। रहने वाले थे, ये वही हैं जो सीधे थे। अच्छा आप कहें, मुमकिन है कोई ये इतराज करे, और अजीब इतराज है, जवाब भी है, कोई ये इतराज करे, बेचारे समझते ही इतना थे, क्या करें, इनकी हैसियत ही इतनी थी, एक शख्स समझ ही नहीं सकता ज्यादा, तो क्या करें उसके बारे में, ये लोग समझते ही इतना थे, इनको क्या समझ में आएगा नाका क्या है जमल क्या है। तो जो फरमाइएगा, जिनकी सोचें ही छोटी छोटी हों, जिनकी फिक्रें ही छोटी छोटी हों, जो शायद ज्यादा सोच ना सकते हों, ज्यादा फिक्र ना कर सकते हों, उनका क्या कसूर है। और परवरदिगार भी आदिल है, परवरदिगार उन पर अजाब करेगा कि जो अजाब लेने की सलाहियत भी रखते हों। वो तो फरमाइएगा, परवरदिगार आदिल है, इनका क्या कसूर है। लेकिन मैं पलट के ये कहूंगा, जब दीन का मामला आता है तो इनसे ज्यादा सादा कोई नजर नहीं आता, लेकिन जब इन्हीं की दुनिया का मामला आता है तो इनसे ज्यादा कोई तेज नजर नहीं आता। इसका मतलब यह है कि ये सादे थे नहीं, सादे बने हुए थे। जो सादा बन जाए उस पर अजाब होगा, जो सादा हो उस पर अजाब नहीं होगा। तो फरमाए, जो खुद से सादा बन जाए तो उसके लिए क्या करें। इसकी मिसाल ये है, अगर कोई गिर जाए तो उसे उठा सकते हैं, लेकिन अगर कोई गिर के पड़ जाए आप उसे कैसे उठाएंगे। जो सो रहा हो उसे उठा सकते हैं, जो सोने की नकल उतार रहा हो आप उसे कैसे उठाएंगे। ये सादे थे नहीं, इन्होंने अपने आप को सादा बनाया हुआ था। जब दुनिया का मामला आता है तो इनसे ज्यादा तेज कोई नजर नहीं आता, लेकिन जब दीन का मामला आता है तो कहते हैं हमें समझ में नहीं आ रहा। तो फरमाइएगा वला, और इसीलिए परवरदिगार आलम की तरफ से या अहले बैत किराम अलैहिम सलाम की तरफ से इन पर लानत है, और खास तवज्जो दी गई वलअनल्लाह उम्मतन असरजत व अलजमत व तनक्कबत व तहय्यत लिक़तालिक, कि जिन्होंने ज़मीना फराहम किया, अगर ये ना होते तो हुसैन कत्ल ना किए जाते। तो फरमाइएगा दोनों मुकाबिल पर कुछ अफराद थे जो लड़ रहे थे, दोनों तरफ, उस तरफ भी कुछ अफराद थे जो लड़ रहे थे जो असल लोग थे, इस तरफ भी 72 थे जो लड़ रहे थे, लेकिन उन असल में जो सीधे लोग बने हुए थे अगर वो ना होते, क्योंकि आपको मालूम है कि सियाही लश्कर थी कि जिसने हालात यहां तक पहुंचाए थे, कल मैंने तफसील से बयान कर दिया। उसके बाद फिर अजीब जुमला कि जाने निसार हो जाए, और ये जुमला भी हमारी तरफ से नहीं, इमाम मोहम्मद बाकिर और इमाम जाफर सादिक अभी अंत व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं। आपको मालूम है परवरदिगार आलम की तौहीद और अहले बैत किराम अलैहिम सलाम की विलायत के बाद जो सबसे बड़ी नेमत है वो माँ बाप की नेमत है, और ये वो नेमत है जो काबिल तकरार नहीं है। तो फरमाइएगा ये वो नेमत है जो काबिल तकरार नहीं है। अगर खुदा ना करे किसी की जौजा का इंतकाल हो जाए तो दूसरी शादी कर लेगा, खुदा ना करे अगर किसी की औलाद का इंतकाल हो जाए तो दोबारा साहिबी औलाद बन जाएगा, लेकिन अगर किसी के माँ बाप गुजर जाएं तो वो माँ बाप को दोबारा नहीं ला सकता। और यहां पर कहा जा रहा है बेबी अंता व उम्मी, मेरे माँ बाप आप पर फिदा हो जाएं, यानी वो नेमत जो काबिले तकरार नहीं वो भी आप पर निसार करने को आमादा हूं। मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं, इतना इश्क करता हूं कि जो कुछ भी परवरदिगार आलम ने दिया, या ज़ियारत जामे कबीरा में फरमाया बेबी अंता व उम्मी व उसरती व माली व आली, मैं मेरे माँ बाप मेरा माल मेरा खानदान मेरी औलाद सब आप पर फिदा हो जाए। हजरत अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहि आवाज दी इन अल्लाह, तवज्जो से खास तौर पे जवानों से तवज्जो चाहता हूँ, अजीब सोचें हमें क्या बनाया है। जो फरमाए परवरदिगार आलम ने हमें कैसा मुकद्दर दिया है, और यहाँ ये बात अर्ज कर दूँ अजीजाने गिरामी, बहुत तफसील से बयान नहीं करूँगा, अजीजाने गिरामी परवरदिगार आलम ने इंसान के सिवा हर शख्स का मुकद्दर खुद लिखा है। सूरज इतने बजकर इतने मिनट पर तुलू होगा लिख दिया परवरदिगार आलम ने। अब सूरज ये नहीं कह सकता कि एक मिनट देर से निकल जाऊं, उसके पास कोई इख्तियार नहीं है। जितनी भी मौजूदात हैं इंसान से हटकर परवरदिगार आलम ने उनकी तकदीर खुद लिखी है। ये फकत इंसान था कि जिसके हाथ में परवरदिगार आलम ने सादा कागज और कलम दे दिया, अपनी तकदीर खुद लिख कर आना। तुम कहां हो, किस तरफ खड़े हुए हो, खुद लिख कर आना, और शुक्र कीजिए कि हमने और आपने तकदीर यहाँ की लिखी थी। हमने तकदीर यहाँ की लिखी और उसकी मुनासिबत से रिवायत बयान कर रहा हूँ। आवाज दी इन्नल्लाहा तबारक व तआला, ये रिवायतें हैं, हमने ये रिवायतें सुनी नहीं हैं, हमने ये रिवायतें पढ़ी नहीं हैं। कब बात होगी इन रिवायत पर, कब पढ़ी जाएंगी ये रिवायतें। इन्नल्लाहा तबारक व तआला इत्तला इलल अर्ज फख्तार, परवरदिगार आलम ने जब रुए जमीन पर नजर की तो हमारा इंतखाब किया, यानी अगर कोई पूरी कायनात में नजर आया तो वो 14 थे। ये तो आपने सुना हुआ है जुमला। अगला जुमला कहना चाह रहा हूं, जो बात बयान करना चाह रहा हूं, इन्नल्लाह तबारक व तआला इत्तला इलल अर्ज फख्तारना, इत्तला इला यानी नजर करना, परवरदिगार आलम ने जब रुए जमीन पर नजर की तो हमारा इंतखाब किया, वख्तारा लना शियातन, और हमारे लिए हमारे शीहों का इंतखाब किया, यानी परवरदिगार ने अपने लिए उन्हें चुना और उनके लिए हमें चुना। कहां जर्रे से और खाक से नूर बना दिया परवरदिगार आलम ने, तो फरमाइएगा वख्तारा लना शियातन, और हमारे लिए हमारे शियों का इंतखाब किया। कौन है ये शिया? यहज़नूना लिहुज़्निना, ये हमारे गम के लिए गमगीन होते हैं। वयफ़रहूना लिफ़रहिना, ये वो हैं जो हमारी खुशी के लिए खुशहाल होते हैं। फिर आवाज़ दी वयब्ज़ुलूना बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम फीना, ये वो हैं जो अपनी जान और अपना माल हमारे राह में निसार कर देते हैं। अपने चाहने वालों की खसूसियत बयान कर रहे हैं, यह जनूना यफ़रहूना यब्ज़ुलूना, ये गमगीन हो जाते हैं इनके गम की वजह से, ये खुशहाल हो जाते हैं इनकी खुशी की वजह से। गोया इनके चेहरों की तरफ देख रहे हैं कब गमगीन होना है कब खुशहाल होना है, और ये हुनर सिर्फ एक कौम के पास है। आप एकदम से रोते हुए को हंसा नहीं सकते और हंसते हुए को रुला नहीं सकते, मिजाज बदलने में वक्त लगता है। सामने वाला अगर रो रहा हो तो उसका मिजाज बदलने में वक्त दरकार है, अगर रो रहा है उसके मिजाज को खुशी के मिजाज में तब्दील करने के लिए वक्त दरकार है, अगर खुश है तो खुशी के मिजाज को गम में तब्दील करने के लिए वक्त दरकार है। मगर क्या करें, अहले बैत के चाहने वाले रोते रोते हंस भी जाते हैं, हंसते हंसते रो भी जाते हैं। फरमाइएगा ये हुनर सिर्फ अहले बैत के चाहने वालों के पास है। क्यों? यहज़नूना लिहुज़्निना व यफ़रहूना लिफ़राहिना, ये वो हैं कि जो हमारे गम के लिए हमारे गम में नहीं। یحزنون فی حزننا نہیں ہے روایت میں، ویفرحون فی فرحنا نہیں ہے روایت میں، کہ یہ ہمارے غم میں غمگین ہوتے ہیں یا ہماری خوشی میں خوشحال ہوتے ہیں، نہیں، روایت یہ کہہ رہی ہے، لام لام علت ہے، یہ ہمارے غم کے لیے غمگین ہو جاتے ہیں، یہ ہماری خوشی کے لیے خوشحال ہو جاتے ہیں، یعنی غم بھی ایسا جیسا ہم چاہتے ہیں، خوشی بھی ایسی جیسی ہم چاہتے ہیں۔ کیونکہ خوشی میں خوشحال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ خوش ہیں، میں جیسے چاہوں خوش ہو جاؤں، نہیں، خوشی بھی ایسی جیسی ہم چاہتے ہیں، غم بھی ایسا جیسا ہم چاہتے ہیں۔ پھر یبذلون باموالہم وانفسہم فینا، یہ اپنی جان اور اپنا مال ہم پر نثار کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد عجیب جملہ فرمایا، کہنے لگے اولئک منا والینا، جو فرمائیے گا کہاں سے جملے کا معنی ہو کہ ہم معنی نہیں کر پائیں گے، آواز دی، یہ چاہنے والے وہ ہیں کہ جو ہماری طرف سے آئے ہیں۔ ابھی تک آپ نے کیا سنا تھا، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ چاہنے والے وہ ہیں جو ہماری طرف سے آئے ہیں اور پلٹ کر ہماری ہی طرف آنے والے ہیں۔ کہنا یہ چاہ رہے ہیں ان کی ابتدا بھی ہم ہیں، ان کی انتہا بھی ہم ہیں۔ ایک صلوات بر محمد و آل محمد۔ وَيَبْذُلُونَ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِينَا، یہ اپنی جان اپنا مال سب کچھ ہمارے حوالے کر دیتے ہیں، سب کچھ نثار کر دیتے ہیں ہماری راہ میں۔ کل میں نے بیان کیا تھا ایک مثال مصائب کے وقت کہ کس کس طریقے سے یہ عذا ہم تک پہنچی ہے، ایسے ہی تھوڑی آج کے زمانے میں فرش عذا پر آ جانا، آج کے زمانے میں اہل بیت کا ذکر کر لینا کتنا آسان ہو گیا، جائیے اس زمانے میں جب خون بہا کر اہل بیت کی ادا کرنی پڑتی تھی، جب نہ جانے فاقے کر کے اہل بیت کی ادا کرنی پڑتی تھی، اتنی آسانی سے کہہ دینا کیا کیا ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے، یہ کیا ہمارے باپ دادا نے ہمارے لیے، یہ کیا انہوں نے ہمارے لیے، کس طریقے سے ہمارے ہاتھوں میں یہ ادا دی ہے۔ میں جوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، شب عاشور آ رہا ہے، شب عاشور میں کیا ہو رہا ہے، توجہ، جو روش ہمارے بڑوں نے قائم کی تھی خبردار وہ بدلنے نہ پائے، کیونکہ یہ وہی روش تھی جو اہل بیت کی طرف سے آئی تھی۔ من قال فینا بیت شعر بن اللہ له بیتا فی الجنہ، شعرا بیٹھے ان کے شان میں، یہ حدیث پڑھ دوں، من قال فینا بیت شعر بن اللہ له بیتا فی الجنہ، جس نے ہماری شان میں ایک بیت شعر کہا اس نے جنت میں اپنے لیے گھر بنا لیا۔ توجہ فرمائیں، یہ جو روایات ہیں یہ کیوں ہیں کہ دیکھو بتانے چاہ رہے ہیں اگر عزا کرو تو ایسے ہی کرنا۔ توجہ فرمائیے گا، یہ ہے عزا کا طریقہ، خبردار اس سے ہٹنے نہ پانا۔ آواز اولئک منا والینا، یہ وہ ہیں جن کی ابتدا بھی ہم ہیں، یہ وہ ہیں جن کی انتہا بھی ہم ہیں، اور یہی چیز بیان کی جا رہی ہے، بے ابھی انت و امی، میرا باپ بھی آپ پر نثار ہو جائے، میری ماں بھی آپ پر نثار ہو جائے، یعنی پروردگار عالم نے جو کچھ مجھے دیا ہے یہ سب آپ کا ہے حسین ابن علی، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ میرا باپ ایسا ہوتا، اگر آپ نہ ہوتے تو نہ میری ماں ایسی ہوتی، شکر ہے خدا کا کہ اس نے آپ دیے کہ میری ماں بھی باقر، میرا باپ بھی باکردار۔ ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اب یہاں پر ممکن ہے کوئی یہ سوچ رہا ہو کہ میں اپنے لیے کیوں دعا نہیں کر رہا، یا اپنے لیے اعلان کیوں نہیں کر رہا، بے نفسی، میں آپ پر فدا ہو جاؤں۔ توجہ فرمائیے گا، ایک صاحبہ نے منت مانی کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں پیغمبر کا اونٹ قربان کر دوں گی، منت ان کی، کام ان کا، اونٹ پیغمبر کا قربان ہوگا۔ پیغمبر نے فرمایا یہ کون سی منت ہے جو پوری ہو رہی ہے، ایک صلوات پر محمد و آل محمد۔ اگر میں امام سے محبت کرتا ہوں، میں امام سے عشق کرتا ہوں، تو میں اپنے آپ کو نثار کروں، اپنے ماں باپ کو نثار کیوں کر رہا ہوں؟ توجہ فرمائے، توجہ فرمائے، مجھے اپنے آپ کو نثار کرنا چاہیے۔ حلوائے کی دکان پر کسی کی فاتحہ نہیں ہو سکتی، توجہ فرمائیے گا، मुझे अपने आप को निसार करना है, मुझे अपने आप को कुर्बान करना है। मैं क्यों कह रहा हूं फुलां कुर्बान हो जाए फुलां कुर्बान हो जाए, मुझे ये कहना चाहिए बेनफसी, मैं आप पर कुर्बान, मैं आप पर फिदा। मगर मैंने जुमला बदला, बे अबी अंता व उम्मी, मेरा बाप भी आप पर निसार, मेरी माँ भी आप पर निसार। कहना ये चाह रहे हैं बात जब तौफीकात किया जाए, तो फरमाइएगा बात जब कमाल किया जाए, बाप जब तौफीकात किया जाए, तो खबरदार अपने माँ बाप को फरामोश ना करना। हुसैन पर कुर्बान हो जाना वो कमाल है जो हर किसी को मयस्सर होने वाला नहीं है। और जब इस कमाल की बात आ जाए तो उन्हें ना भूल जाना जिनकी वजह से तुम पर नेमतें आ रही हैं। जब आगे बढ़ने लगो तो माँ बाप को पीछे ना छोड़ जाना, उनको लेकर आगे बढ़ना, यही नहीं बल्कि और आगे भेज देना। क्योंकि मसला यह है कि हुसैन पर हर कोई निसार भी नहीं हो सकता। हुसैन पर निसार होने के लिए अहलियत चाहिए, हुसैन पर निसार होने के लिए काबिलियत चाहिए, हुसैन पर निसार होने के लिए सलाहियत चाहिए। मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, मौला मेरे माँ बाप का हदिया कबूल कर लें। फरमाइएगा मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, इससे अच्छी क्या दुआ हो सकती है कि मेरे माँ बाप जब हुसैन पर फिदा हो जाएं। फरमाएं और आपको मालूम है जो भी हुसैन पर फिदा हो गया, हुसैन ने उसका ऐसा हाथ थामा। मैं कुछ सालों पहले ये बात पढ़ चुका हूँ, ये वाकया पढ़ चुका हूँ, दोबारा बयान कर रहा हूँ। हुसैन ने उसका ऐसा हाथ थामा, जो भी हुसैन पर फिदा हो गया, जो भी हुसैन पर निसार हो गया, हर कोई हुसैन पर निसार नहीं हो सकता, हर कोई हुसैन पर फिदा नहीं हो सकता। और जो भी हुसैन पर फिदा हो जाए तो फिर वही रहेगा जहाँ हुसैन रहेंगे। फरमाइएगा ये मैंने बयान किया था कुछ सालों पहले कि ये जरूरी नहीं है कि जो भी जन्नत में चला जाए वो इमाम हुसैन के साथ रहेगा, ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। कितने ऐसे अफराद हैं जो कभी भी जन्नत में जाने के बाद इमाम हुसैन की ज़ियारत नहीं कर सकेंगे। हम तो जन्नत में जाएंगे, जाइए आप ही जन्नत में जाएंगे, आपके सिवा किसी को हक नहीं है जन्नत में जाने का। मगर जन्नत में जाने के बाद रहना कहाँ है ये आपने तय करना है। तो फरमाइएगा कितने ऐसे हैं जो जन्नत में जाने के बाद कभी भी इमाम हुसैन के साथ नहीं रह सकेंगे, कितने ऐसे हैं जो 1000 साल में एक मर्तबा इमाम हुसैन की ज़ियारत करेंगे, और कहाँ जन्नत और कहाँ हुसैन। ये रिवायत में आया है कि जन्नत इमाम हुसैन के नूर से बनी है। सोचिए जिसके नूर की एक झलक जन्नत हो, सारा आलम इस्लाम जन्नत और हुरुल ईन के पीछे मर रहा है। और रिवायत ने कहा कि जन्नत भी हुसैन के नूर से बनी, ये रिवायत बयान कर रहा हूं, और हुरुल ईन भी हुसैन के नूर से बनी। इसीलिए रिवायत में बयान हुआ कि कयामत के दिन जब हुरुल ईन बुलाएगी आपको, आजादारों को, इमाम हुसैन से मोहब्बत करने वालों को, इमाम हुसैन के लिए मातम करने वालों को, आ जाओ परवरदिगार आलम ने मुझे तुम्हारे लिए बनाया है, तो ये आजादार कहेंगे रहने दो, हुसैन के होते हुए तुम्हारी क्या जरूरत। ये रिवायत ना होती तो मैं ना पढ़ता, हुसैन के होते हुए तुम्हारी क्या जरूरत। लेकिन कितने ऐसे हैं जो हमेशा इमाम हुसैन के साथ रहेंगे, क्यों? इसलिए कि जिन्होंने अपनी जिंदगियां, अपनी जान, सब कुछ हुसैन इब्न अली पर कुर्बान कर दिया। कैसे हो सकता है कि हुसैन छोड़ दें? एक शख्स है सईद इब्न अब्दुल्लाह हनफी, जोहर का वक्त हुआ, करबला के शहीद हैं, जोहर का वक्त हुआ, कहने लगे सईद मुझे जोहर की नमाज पढ़ा दो। कितना जी मरहल आ गया, सईद खड़े हो गए, मौला मैं आपको नमाज पढ़ाऊंगा। जहां से तीर आया सईद ने रोका, मक्तल ने लिखा 13 तीर लगे हैं सईद के। कितनी आसानी से आपने सुन लिया, एक तीर इंसान के लग जाता था इंसान जमीन पर गिर जाता था, मगर कौन सी चीज़ है जो सईद को गिरने नहीं दे रही। अगर अगर यकीन नहीं आ रहा तो अपने आप को देखिए, कौन सी चीज है जो आपको घर में बैठने नहीं दे रही। सारा आराम फिदा करके आ गए, सब कुछ निसार करके आ गए राहे हुसैनी में। मैं नहीं कह रहा कि अपने आप का सही से मुकाबला करें, मैं बस मिसाल देना चाह रहा था, तशबीह देना चाह रहा था, वरना कहाँ सईद कहाँ। जब किसी ने कहा कि मैं भी होता तो ज़ोरे आशूरा तीरों को रोक लेता, ख्वाब में देखा कि इमाम ने फरमाया कि तीर रोकोगे, बची मौला खड़ा हो गया, तीर आते रहे, यहाँ से तीर आया तो यहाँ से बचा, यहाँ से तीर आया तो यहाँ से बचा। अब जो पलट के देखा तो हुसैन तीरों से छलनी थी। कहने लगे मौला माफ कर दें, अब आप ही माफ तो कर दूंगा इस शर्त पे कि कभी अपना मुकाबला मेरे असाब के साथ ना करना। कहाँ मिलेंगे ऐसे असाब। सईद ने कहा मौला मैं तीरों को रोकूंगा। 13 तीर लगे हैं सईद के, 13 तीर। और जब आवाज आई अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, यहाँ नमाज तमाम हुई, वहाँ सईद घोड़े से जमीन पे गिरे। और फिर सईद को ये एहसास हुआ कि कोई बराबर में बैठा है। देखा तो क्या देखा, कहाँ मेरा ऐसा मुकद्दर कि मेरा सर हुसैन की आगोश। आप मुझे बताएं सईद ने कोई कम काम किया था। जाकिर सामे और मजलिस करने वाले, मजलिस सुनने वाले, जिक्र करने वाले सब सुने, सबसे पहले मेरे लिए। सईद ने कोई कम काम किया था? जी नहीं, 13 तीरों को रोका था, जान बचाई थी। किसकी? आम इंसान की नहीं। मन अहयन्नास फकअन्नमा अहयन्नास जमीअ, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने सारी इंसानों की जान बचाई। सईद ने एक इंसान की नहीं, जान कायनात की जान बचाई थी। सईद को हक था कि कुछ कह देते, मगर नहीं, कहते मौला मैंने 13 तीर रोक दिए, अच्छा काम किया। कुछ नहीं कहा, एक जुमला सईद ने कहा। मैं वो मिसाल देना चाह रहा हूँ कि किस तरीके से जब कोई अपनी जान निसार करता है तो हुसैन किस तरीके से उसे बढ़ के आगोश में ले लेते हैं। और यही वो दुआ है जो अपने माँ बाप के लिए कर रहे हैं। एक जुमला सईद ने कहा, एक जुमला इमाम ने कहा। सईद ने अपना मुकद्दर लिखवाया और इन्होंने उस पर दस्तखत किए। आवाज़ दी, अल्रजीता अन्नी या मौला, या मौला क्या राजी हो गए। और सईद ने बताया कि कोई फर्श ज़्यादा बिछाए या जिक्र करे या सुने या बड़ा तबर्रुक बांटे या बड़ी मजलिस करे, ये ना सोचे कि बड़ी मजलिस कर दी। बड़ी मजलिस तो वो है जिसे वो कबूल हो, जिससे वो राजी हो जाए। बड़ा जिक्र तो वो है जिससे वो राजी हो जाए। हल रदी तानी या मौला, या मौला क्या राजी हो गए। पलट कर इमाम ने जवाब दिया, नाम। इमाम के यहाँ कोई तकल्लुफ नहीं है। मैं बारहा इस बात को बयान कर रहा हूँ, जो बात नहीं है कोई भी इमाम की जबान से नहीं कहलवा सकता, और जो बात है कोई भी इमाम की जबान से रोक नहीं सकता। वो बात मुमकिन है कि बास मसलहतों की बुनियाद पर इमाम अभी नहीं, थोड़ी देर बाद इशारा करें। आवाज़ दी, मौला क्या राजी हो गए। कहने लगे, हाँ, अंता अमामी फिल जन्नत, तुम हमेशा जन्नत में हमारे साथ। कहाँ मिलता है ये मुकद्दर? यहाँ मिलता है ये मुकद्दर, इस फर्श पर मिलता है ये मुकद्दर। ये मुकद्दर के दरवाजे ही तो खुले हुए हैं, जो चाहे आकर अपना मुकद्दर बदल ले, जो चाहे राहे हुसैनी में निसार हो जाए, खुद भी निसार हो जाओ। क्योंकि अहले बैत की तालीमात हैं, परवरदिगार आलम की तालीमात हैं कि जब आगे बढ़ो तो अकेले ना पढ़ो, अपने घर वालों को साथ लेकर पढ़ो, अपने माँ बाप को साथ लेकर पढ़ो। जब ये मरहला आ जाए और हुसैन पर निसार होने का वक्त आ जाए तो खबरदार अकेले ना जाना, अपने माँ बाप को भी निसार कर दो, अपनी औलाद को भी निसार कर दो, अपने ख़ानदान को भी निसार कर दो, कि कल को ये पलट के कह ना दे अकेले चले गए, हमें छोड़ के चले गए। नहीं, ये दरवाज़ा खुला हुआ है, मगर हाँ, यहाँ तक आने में बहुत जहमत उठानी पड़ेगी, खून देना पड़ेगा, अपनी जान देना पड़ेगी, अपने खून से गारा बनवाना पड़ेगा। मगर सख्त है, सख्त बहुत है, इसीलिए अगर कोई आने लगे तो बता दें आ तो रहे हो, लेकिन यहाँ बचना इतना आसान नहीं है, यहाँ रहना इतना आसान नहीं है। यहाँ वो टिक सकता है जो मर्द हो बस, और कोई नहीं। ये रास्ता सख्त है, दुश्वार है, मगर हाँ जब हम देखते हैं उन्हें तो बहुत हिम्मत मिलती है कि जिनके घर के बच्चे ऐसे हों, एक जान मिल जाती है, हिम्मत आ जाती है। सोचिए 13 साल कासिम, 1000 मरतबा सुना हुआ वाकया है, 13 साल कासिम। जज्बा देखें, जब सब याशूर मैदान नामा पढ़ना शुरू किया है और कहने लगे हबीब तुम्हारा नाम भी है, मुस्लिम तुम भी शहीद होंगे, जुहैर तुम भी शहीद होंगे, अली अकबर मेरे बेटे तुम्हें भी शहीद होना है, एक एक का नाम लिया, उसका मकाम बताया, यहाँ तक लिखा गया कि उसका मकाम दिखाया, कल ये मकाम मिलने वाला है तुम्हें। शबे आशूर बुरैर जो हमारे इस्तेलाह में आरिफ थे कि जुहैर के मानवी हालात बहुत अजीब थे, जुहैर कभी मजाक नहीं करते थे, सोचते रहते थे, किसी और फजा में थे। शबे आशूर मजाक करने लगे, हंसने लगे, किसी ने कहा बुरैर आप हंस रहे हैं, आपको तो कभी हमने हंसते ना देखा था। कहने लगे कैसे ना हंसूं, कल वहां जा रहा हूं जहां की तमन्ना थी। जब सबके नाम ले लिए तो कोने से एक बच्चा उठा, चाचा मेरा नाम, मेरा नाम नहीं लिया आपने, सबका नाम ले लिया। कहने लगे मेरे बेटे कैफल मौत इंदक, इमाम किससे सवाल कर रहे हैं, 13 साल कासिम से। हजरत कासिम की मुसीबत भी है और फजीलत भी है। इंसान बच्चे से वो सवाल करता है कि जिसका वो जवाब दे सकता हो। इमाम का सवाल बता रहा है कि कासिम कहीं और हैं। आप बताएं 13 साल बच्चे से ये सवाल होता है, मगर इमाम सवाल करके बता रहे हैं कि मेरे कासिम को कम ना समझना। कैफल मौत हो इंदक, मेरे बेटे कासिम ये बताओ कि तुम्हारे नज़दीक मौत कैसी है। आवाज थी मौत अहलाम में नरहसा, शहद से ज्यादा शीरी। ये जुमला बता रहा है कि कासिम अभी बहुत छोटे थे, क्योंकि बच्चे शीरीनी से मानूस होते हैं, और कासिम वही जवाब दे रहे हैं शहद से ज्यादा शीरी लगती है मुझे मौत। इसके बाद इमाम ने अजीब जुमला कहा मेरे बेटे तुम भी शहीद होंगे और तुम्हारा छोटा भाई अली अजहर भी शहीद होगा। जब कासिम का नाम आया तो कासिम खुश हो गए, चचा मैं शहीद होऊंगा शुक्रिया। लेकिन जब ये कहा कि तुम्हारा छोटा भाई भी शहीद होगा, एक मर्तबा गैरत बनी हाशिम ने जोश मारा, चचा दुश्मन खेमों में आ जाएंगे। कासिम अच्छा ही हुआ कि शामे गरीबा में नहीं थे। तुम कैसे देखते तुम्हारी माँ एक खैमे से दूसरे खैमे में, दूसरे खैमे से तीसरे खैमे में। शबे आशूर हर माँ अपनी औलाद को समझा रही है कि देखो कल रोजे कुर्बानी है। उम्मे फरवा ने कासिम को बिठाया हुआ, मेरे बेटे तुम्हारा बाप तो नहीं है। तुम्हारा बाप जाते जाते तुम्हें मेरे हवाले करके गया था। और यहाँ जिक्र मुसीबत शुरू करने से पहले जुमला कह दूँ, अज़ीज़ाने गिरामी खूब आंसू बहाइएगा, आज उसका जिक्र मुसीबत है जो यतीम है, इसका बाप नहीं है। मेरे बेटे तुम्हारा बाप तुम्हें मेरे हवाले करके गया था, कल रोजे कुर्बानी है, मुझे फातिमा जहरा से शर्मिंदा ना होने देना। रात गुजरी, रोजे आशूर आया, अली अकबर की अजान से मारका शुरू हो गया। आशूर से करीब हो रहे हैं ना आप लोग, दिल कितना मगमूम होता जा रहा है, दिल कितना बेचैन होता जा रहा है। اگر کان لگائے تو آج بھی آواز آ رہی ہے حل میں ناصر حسین آج بھی غریب ہیں، کل میں نے بیان کیا تھا حسین آج بھی غریب ہیں، اسی لیے تو دل ٹوٹ جاتا ہے جب محرم کا چاند نکلتا ہے، اس لیے کہ پردہ غیبت میں کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے۔ قاسم امام کے پاس آئے، کہنے لگے چچا مجھے اجازت دیں گے؟ کہنے لگے نہیں میرے قاسم، تم نہیں جا سکتے، تم میرے بھائی کی امانت ہو، میں تمہیں بھیج نہیں سکتا میرے بیٹے۔ قاسم بار بار آتے ہیں، امام منع کر دیتے ہیں، قاسم تھک کر گھٹنوں میں منہ دے کر بیٹھ گئے۔ ام فروا کا وہاں سے گزر ہوا، میرے بیٹے کیا مجھے شرمندہ کرانا ہے؟ کہنے لگے اماں میں بہت گیا مگر چچا اجازت نہیں دیتے۔ پریشان ہو گئے ام فروا، کہنے لگی قاسم یاد کرو تمہارے باپ کا آخری وقت تھا، تمہارے بازو پہ تعویذ باندھا تھا اور کہا تھا میرے بیٹے جب کوئی سخت وقت آ جائے تو اسے کھول کر پڑھ لینا۔ میرے بیٹے اس سے زیادہ سخت وقت کیا ہوگا کہ جب حسین چاروں طرف سے گھر چکے ہیں۔ تعویذ کھولا، قاسم نے پڑھا، لبوں پہ مسکراہٹ آئی، دوڑے ہوئے آئے، چچا سفارش لے کر آیا ہوں، چھینٹے دیے جاتے ہیں۔ آج سات محرم ہے نا، آپ کے گھر میں بچے پیاسے تو نہیں ہیں؟ آپ کو معلوم ہے نا اگر بچہ پیاسا ہو جب تک اسے پانی دے نہ دیا جائے بچہ خاموش نہیں ہوتا۔ یہی تو وجہ ہے مقتل نے لکھا تین دن تک آواز آتی رہی بیدار ہوئے، کہنے لگے ذرا وہ صندوق لے کر آؤ۔ صندوق منگوایا، حسن کا امامہ اٹھایا، قاسم کے سر پہ رکھا، حسن کی اماں قاسم کے دوش پہ رکھی اور مقتل نے لکھا امامے کے دو حصے کر دیے، ایک حصہ پھاڑ کر سینے پر ڈال دیا جو یتیمی کی علامت تھا۔ دشمنوں خیال رکھنا، وہ آ رہا ہے جس کا باپ نہیں ہے جو یتیم ہے۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا کہ ایک چاند کا ٹکڑا خیمے سے نکلا اور ظلم کے بادلوں میں چھپ گیا۔ سوچئے جو دشمن کی نگاہ میں ایسا ہو وہ ماں کی نگاہ میں کیسا ہوگا۔ امام نے قاسم کو سوار کرا دیا، قاسم میدان میں جنگ کر رہے ہیں، ارزق کو مارا، ارزق کے چار بیٹوں کو مارا، جنگ کرتے کرتے کسی کی آواز آئی یہ علی کا پوتا ہے، یہ عباس کا بھتیجا ہے، اسے ایسے قتل نہیں کر سکو گے، چاروں طرف سے گھیر لو۔ تین دن کے بھوکے پیاسے کہاں تک لڑتے 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 ایک شخی نے پیچھے سے ایسی ضربت ماری، قاسم کے سر پہ آگے لگی، قاسم زمین پر گرے، گرتے گرتے کہنے لگے چچا میرا سلام، کہنے لگے چچا میری مدد کرو۔ جیسے ہی قاسم کی آواز آئی حسین فوراً میدان میں گئے، حملہ کیا، اس کا ہاتھ کٹا جس نے حضرت قاسم کے شمشیر ماری تھی، جیسے ہی ہاتھ کٹا وہ چلایا مجھے بچاؤ، اس کا چلانا تھا غضب ہو گیا، جیسے ہی وہ چلایا غضب ہو گیا، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، ادھر کے گھوڑے ادھر ہوئے، درمیان میں قاسم لیٹے ہوئے تھے، جب بھی کوئی گھوڑے کی ٹاپ پڑتی सी बैठी तो इमाम ने देखा कि कासिम पामाल हो चुके थे। अजीब जुमला कहा, अज़ा वल्लाहे अला अम्मे के, ऐ मेरे कासिम तेरे चाचा पर बड़ा गिरा है, तू बुलाए और तेरा चाचा मदद ना कर सके। कासिम की मैयत उठाए खैमे में लेकर आए, उम्मे फरवा ने देखा मेरे बच्चे के फूल से जिस्म पर निशान कैसे हैं, मुझे नहीं मालूम। उम्मे फरवा ने कैसे बर्दाश्त किया, खत्म कर दिया, मुझे नहीं मालूम कैसे बर्दाश्त किया। इमाम ने क्या जवाब दिया, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ जब शाम गरीब आए फिजा दौड़ी हुई आई, बीबी गजब हो गया, बीबी गजब हो गया, फिजा में क्या हुआ, अब तो मेरा हुसैन भी मारा गया। कहने लगे उमर साहब ने कहा है हुसैन को कत्ल करने के बाद कोई जमीन पे ना उतरे, अभी लाशा पामाल करना है।